ओम शांति। पश्चिम जगत में एक लेखक कवि हुए थे, एचजी वेल्स। उस लेखक ने एक बहुत प्रसिद्ध कहानी लिखी थी जो कि 1911 में पब्लिश हुई थी। उस कहानी का शीर्षक था द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, अंधों का एक देश। उस कहानी में दिखाया है कि एक नवयुवक है जिसका नाम था नून यस। तो ये जो नवयुवक है, एक दिन किसी एक अज्ञात पहाड़ी को ढूंढते ढूंढते पहाड़ी के उस ओर पहुंच जाता है और उस पहाड़ी के अंदर के पीछे जो एक वादी होती है, उस वादी में पहुंच जाता है, एक वैली में, और वहां वो देखता है एक बस्ती है, एक गांव है, एक लोगों की नगरी है जो कि संसार से एकदम अलग थलग, संसार से एकदम मेन स्ट्रीम से कट। ऐसी जगह वो पहुंचता है जहां पर चारों ओर पर्वत होते हैं और बीच में वो गांव, और उस गांव में हर एक व्यक्ति अंधा होता है क्योंकि जैसे ही वहां किसी बच्चे का जन्म होता है उन्हें एक ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो दृष्टि बाधित हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं बचपन से ही। इस गांव के किसी व्यक्ति ने आज तक कभी प्रकाश न देखा था। ये नवयुवक बहुत खुश हो जाता है यह सोचकर कि इस अंधों की नगरी में मैं एक ही हूं जो देख सकता है। वो वहां रहने लगता है परंतु उस गांव के जो लोग हैं उसे वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो गांव के लोग कहते हैं इसके चेहरे पर ये जो है आंखें, ये कोई बीमारी है इसकी, इन आंखों की वजह से, इस बीमारी की वजह से ये निरंतर अशांत रहता है, बेचैन रहता है, ढूंढते रहता है। नून यस वहां पर एक व्यक्ति के घर काम में लग जाता है और उस व्यक्ति के घर काम करते करते वो जो अंधा व्यक्ति होता है, वहां का सभी अंधे होते हैं परंतु वहां का वो अंधा व्यक्ति उसकी जो बेटी है उसके साथ में इसे प्यार हो जाता है। वो बेटी भी अंधी है और प्यार ऐसा हो जाता है कि वो कहता है उस बेटी से मुझे तुमसे विवाह करना है। बेटी उसको समझाती है विवाह तो तुम करोगे परंतु मेरा समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर ये जो है आंखें, ये तुम्हें विक्षिप्त किए हुए है, पागल किए हुए है, तुम्हें इन आंखों को निकालना पड़ेगा। वो नहीं मानता, वो कहता है ऐसे कैसे निकाल दूं। कहानी में दिखाया है सारा गांव उसके विरोध में हो जाता है परंतु उसका प्यार इतना गहरा होता है कि वो लास्ट में मान जाता है। ठीक है, तो सारे गांव वाले भी खुश हो जाते हैं, ये जो एक एबनॉर्मल है व्यक्ति यहां पर, इसको हम ठीक कर देंगे। दूसरे दिन सुबह शल्य चिकित्सा होने वाली होती है, सर्जरी। वो रात वो व्यक्ति सोचते रहता है कि अब वास्तव में मेरी आंखें चली जाएगी परंतु वो जो कन्या होती है वो भी उसे बहुत समझाती है, तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, अगर तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा है तो हां ना आखिरी में वो मान जाता है। तो कहानी में दिखाया है जिस दिन उसकी आंखें निकालने वाले होते हैं उस दिन सुबह सुबह वह व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ता है और पहाड़ी से देखता है निसर्ग का वह सौंदर्य, सुनाई आती है उसे उन चिड़ियों की चहचहाट, देखता है उस सूर्य को, उस सूर्योदय को, देखता है क्षितिज को, आकाश को, बादलों को, निसर्ग को और निसर्ग के सौंदर्य को। और उस निसर्ग के सौंदर्य को देखकर वो सोचने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी आंख नहीं निकालूंगा। एचजी वेल्स ने यह कहानी यहीं पूरी की और उसमें कहा कि उसी दिन सुबह सुबह वह व्यक्ति वहां से भाग गया और वापस कभी उस वादी में, उस खाई में, उस वैली में कभी नहीं लौटा। उस कहानी को बहुत सारी लोगों ने बाद में थोड़ा चेंज किया, किसी ने कहा कि वो कन्या को लेकर वो भाग गया, कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, ये कहानी उस समय बहुत प्रसिद्ध हुई थी। ये हम क्यों सुना रहे हैं आज? बोलने वालों की नगरी में यदि कोई न बोलने वाला पहुंच जाए तो उसे क्या समझा जाता है? एबनॉर्मल। कैसे भी करके उसे ठीक करना ही है। परंतु जिसने मौन का सूर्य देख लिया है और परंतु जिसने मौन का वो क्षितिज देख लिया है, मौन का वो आकाश देखा है और मौन के वो बादल देखे हैं और मौन का वो संगीत सुना है, मौन का वो माधुर्य, वो मधुरिमा, वो स्वीटनेस जिसने टेस्ट कर ली है, वो कभी भी बहकावे में नहीं आएगा। और जैसे वो व्यक्ति वहां से छूट जाता है वैसे ही इस आवाज की दुनिया से, स्वर की दुनिया से, साउंड की दुनिया से, नॉइज की दुनिया से, वार्तालाप की दुनिया से, वाद विवाद की दुनिया से ऐसा व्यक्ति छूट जाता है। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है चिंतन का सारांश। सारांश अर्थात सार, सारांश अर्थात रिजल्ट, सारांश अर्थात एसेंस। जब व्यक्ति चिंतन करते करते, ज्ञान का चिंतन करते करते, ईश्वरीय चिंतन करते करते, नॉलेज का चिंतन करते करते ऐसी अवस्था को पहुंचता है तब वो मगन हो जाता है। आवाज की यह दुनिया से दूर हट जाता है। कैसा यह आवेग है बोलने का, कैसी एक्साइटमेंट है बोलने की, जहां हर व्यक्ति बोलना ही चाहता है। मौन अर्थात चुप रह जाना नहीं, मौन अर्थात इस पागलपन से मुक्त होना है, इस वेग से, इस आवेग से, इस एक्साइटमेंट से, इस आवेश से। दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है, परंतु जो सुन रहा है वो वास्तव में नहीं सुन रहा है, क्योंकि एक दूसरा वार्तालाप उसी के मन में चालू है, वो तो केवल इंतजार कर रहा है कब वो सामने वाला शांत हो और अपने अंदर जो वार्तालाप है उसको चालू करे। इनर डायलॉग पश्चिम में काल जुंग हुआ है। सिगमंड फ्राइड, जिसने साइकोएनालिसिस को पूरा बदल दिया, मनोविज्ञान के जगत को, और जिसने पहली बार कहा था, और उसके बाद से ही काम विकार सारे जगत में इतना ज्यादा स्वीकार ये हुआ, उसी का शिष्य एक हुआ कार्ल जंग। उसने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा पागलखाना था और उस पागलखाने में सभी पागल रहते थे। एक बार मैंने सोचा कि दो पागल आपस में क्या बात करते हैं, मुझे सुनना है। तो जहां पर पागल थे उनके एक कमरे के पास वो जाकर छिप कर बैठ गया और अंदर दो पागल बात कर रहे थे जो कि वहां पर इलाज के लिए लाए गए थे, और उनकी बीमारी ये थी कि वो बहुत ज्यादा बात करते थे। तब बात करते थे जब कोई नहीं होता था, इसीलिए वहां लाए थे। हम में और उनमें बहुत अधिक भेद नहीं है। तो कार्ल जंग ने उनकी बातें सुनी। वो दोनों बात कर रहे थे, एक बात करता था और जब पहला बात करता था दूसरा चुप रहता था। पूरी जब बात होती थी तभी दूसरा जो पागल था वो बात करना चालू करता था। ऐसी शिष्टता थी उनमें, ये एक बात करता फिर दूसरा बात करता, जब दूसरा करता तो पहला शांत हो जाता, पूरी बात सुनता, पूरी बात पूरी हुई तो फिर वो बोलने लगता। परंतु उसने और एक बात देखी, उसने देखा कि जो वो बात कर रहे उसमें कोई तालमेल नहीं है। जहां बात पूरी हो रही है पहले की, दूसरा अपनी बात कहीं और से चालू कर रहा है जिसका कोई संदर्भ नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई लेना देना नहीं बातचीत से। वो उनसे पूछता है कार्ल जंग कि भाई मेरे तुम लोग क्या कर रहे हो, ये कौन सा वार्तालाप कर रहे हो, कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, और तुम लोग इस तरह एक जब बोलता है तो दूसरा चुप क्यों हो जाता है। तुमको तो लाया ही यहां इसलिए था कि तुम ज्यादा बात करते हो। तो वो कहते वी आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ कॉन्वर्सेशन, हम बातचीत के नियमों को फॉलो कर रहे हैं। उसने लिखा है मनुष्य जाति भी शायद यही कर रही है। भूलने का जो आवेग इतना अधिक है, आवेश इतना अधिक है, एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि दूसरा कब शांत हो और हम बोले, दूसरा होना, दूसरे का होना या न होना ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा तो खूंटी मात्र है जिसमें हम अपने बोल टंगा रहे हैं। वास्तव में हमें बोलना है। मौन इस सीजन की सबसे पहली मुरली याद है सभी को, 16 अक्टूबर 2016 मन के विषय में बाबा ने चार बातें कही थी, मन की शांति, मन का मौन, मन की डांस, और चौथा मन का मौन, मन की शांति, मन का डांस, और चौथा मन शक्तिशाली। एक मास के लिए होमवर्क दिया था बाबा ने, मन को शक्तिशाली बनाओ। एक सप्ताह के लिए होमवर्क दिया था मन का मौन। जो भी ज्ञान का हम चिंतन करते हैं, जो भी ज्ञान का हम मनन करते हैं, अगर वो वास्तविक चिंतन है और वास्तविक मनन है तो वो करते करते ही योग से जो सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होती है वही अवस्था चिंतन से भी प्राप्त हो सकती है। जो ज्ञान से सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होती है, याद में आत्मा मगन हो जाती है, वैसी ही अवस्था ज्ञान का चिंतन करते 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 आत्मा को उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि वो मनन इतना गहरा हो जाए कि वो मनन करते 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 ही आत्मा उसमें जैसे डूब जाती है, मगन अवस्था आ जाती है। जैसे उसका अपना अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है। और ये जो अवस्था है ज्ञान की, ये और योग की समान है। जितना योग की तरफ हमारा ध्यान है, क्या उतना ही ज्ञान के चिंतन की तरफ हमारा ध्यान है? शायद नहीं। ज्ञान अर्थात हमारे लिए मुरली क्लास जाना, डायरी खोलना, महावाक्य लिखना, प्रश्न लिखना, उत्तर लिखना, मुरली की कुछ पॉइंट लिखना, धारणा के लिए सार एक पॉइंट, दो पॉइंट, वरदान, विश्लेषण और स्लोगन, डायरी बंद। इसी को हमने ज्ञान की संज्ञा दी है। ज्ञान में चलने की भी संज्ञा यही है हमारी, शायद ऐसा नहीं है। क्या ज्ञान को हमने ऐसा समझा है जैसा वो है? क्या ज्ञान की गुह्यता को हमने समझा है? ज्ञान की गहराई को हमने जाना है? एक एक शब्द के अर्थ को, वाक्य के गुणार्थ को और भावार्थ को समझा है? शायद नहीं। और जब हम वो समझने लगते हैं, जब हम वो अर्थ जानने लगते हैं, तब मौन स्वतः ही घटित होता है, डीप साइलेंस। महात्मा गांधी ने एक आर्टिकल लिखा था कभी, 6 अगस्त 1925, यंग इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा है, वर्णन किया है, जब मैं अफ्रीका में था एक बार एक मठ में गया, बहुत बड़ा आश्रम था जहां पर सन्यासी रहते थे, और उस आश्रम का नाम था द ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री। ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री नाम का वो मठ था, वहां मैं गया और वहां मैंने क्या देखा कि वहां पर सभी लोग मौन व्रत धारण किए हुए, जितने सन्यासी वहां पर है 500 से भी अधिक, सभी मौन है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। ऐसी अद्भुत शांति थी वहां पर, कोई शब्द, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, और सारे कार्य फिर भी हो रहे हैं। तो वहां के जो हेड थे, मठाध्यक्ष जो इंचार्ज, उससे उन्होंने पूछा, उस फादर से, कि ये क्या है? उस फादर ने कहा, यहां पर सभी सन्यासी मौन व्रत का पालन करते हैं। महात्मा गांधी ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि हम मनुष्य मात्र इतने कमजोर प्राणी हैं, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए हमें आज तक समझ में नहीं आया है। बोलते हैं तो गलती हमेशा करते हैं, थोड़ा ज्यादा बोलते हैं या जो बोलना नहीं चाहिए वो बोलते हैं, और हमारे अंतकरण में, अंत चेतना में, इनर कॉन्शियस में जो आवाज है, जो इनर वॉइस है, वो इतनी पहले ही कम है, इतनी धीमी गति की है कि यदि उस आवाज को सुनना है तो बाह्य सभी आवाजों से हमें मुक्त होना होगा। इसलिए इस आश्रम का यह नियम है कि यहां जो भी सन्यासी आता है उसको मौन व्रत का पालन करना पड़ता है। यदि हम अपनी दिनचर्या को देखें, सुबह से लेकर रात तक, जिसमें हम केवल बोल रहे हैं, बोल रहे हैं और बोल रहे हैं, कितनी ही हमारी शक्ति इस बोल के द्वारा व्यय हो रही है, हम शब्द को बाहर फेंक रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? इस शक्ति को हम ना फेंके। क्या ऐसा हो सकता है कि वाणी शांत हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि मुख के बोल शांत हो जाए और धीरे धीरे हम मन के मौन की ओर चले? क्या ऐसा हो सकता है कि मन का मौन हो जाए और फिर मुख का भी मौन हो जाए, एक से दूसरे की तरफ और दूसरे से पहले की तरफ? क्या ऐसा हो सकता है? तो आज हमें मौन की चर्चा करनी है। मा उ न तीन शब्द है। मा अर्थात मन, उ अर्थात उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का एक अर्थ होता है आकर्षण, और न अर्थात नकार। मन जो संसार की ओर आकर्षित हो रहा है वहां से उसे रोक देना अर्थात मौन, अर्थात साइलेंस, अर्थात चुप रह जाना, अर्थात यात्रा आरंभ करनी है शब्द से निशब्द की ओर, वाणी से निर्वाण की ओर। इस संसार को हमें जिन जिन बातों ने जोड़ रखा है उसमें एक मुख्य बात है मुखरता, स्पीच। अध्यात्म की जो जर्नी है, अध्यात्म की जो यात्रा है, वो आंतरिक यात्रा है। यदि अंदर की यात्रा में जाना है तो बाहर की चीजों से जो भी चीजें हैं जिन्होंने हमें जोड़ा है उनको सबसे पहले तोड़ना होगा। कहानी सभी ने सुनी है उन यात्रियों की, जो कि बहुत सारे मित्र थे, बहुत सारी शराब पी ली, नाव में बैठे रात भर नाव चलाते रहे, रात भर पतवार चलाते रहे, और सुबह उठ के जब देखा तो नैया वहीं थी। क्यों? क्योंकि लंगर को नहीं खोला था। यदि अंदर की यात्रा में चलना है तो क्या करना होगा? जिस जिसने हमें बाहर जोड़ के रखा है उसको तोड़ना होगा। और एक मुख्य जो चीज है जिसने हमें जोड़ रखा है वो है स्पीच। यदि स्पीच को कम कर दिया जाए, यदि स्पीच को या फिर संपूर्णतः रोक दिया जाए, तो क्या यह संभव है कि आंतरिक यात्रा सहज हो जाएगी? उसी महात्मा गांधी के एक आर्टिकल में आगे एक जगह लिखा है, डिजायर टू एग्जैजरेट, प्रोननेस टू एग्जैजरेट, टू सप्रेस और मॉडिफाई द ट्रूथ इज नेचुरल वीकनेस ऑफ मैन एंड साइलेंस इज नेसेसरी टू सरमाउंट इट। लिखा है कि मनुष्य की एक प्राकृतिक, एक कुदरती कमजोरी है कि वो सत्य को या तो दबाता है, बदलता है, या उसको बड़ा चढ़कर बताता है। इस एक कमजोरी से यदि मुक्त होना है तो उसके लिए मौन की आवश्यकता है, साइलेंस की आवश्यकता है। तो क्या हम चुप हो जाए, सारे दिन भर बोले ही नहीं, ये इसका अर्थ है? नहीं। पहले हम मौन के प्रकार को समझेंगे। एक तो प्रकार बता दिया, मन का मौन, और दूसरा वाणी का मौन। एक दूसरा मौन है, एक सच्चा मौन और एक झूठा मौन। झूठा मौन जो है वो बड़ा खतरनाक है, जो लादा गया है, फोर्स्ड किया है। और चार प्रकार के मौन हैं, जिसकी चर्चा शास्त्रों में बहुत आती है। एक है काष्ठ मौन। काष्ठ मौन अर्थात संपूर्ण शरीर जिसमें शिथिल और शांत हो जाए, कोई हलचल नहीं शरीर की। दूसरा मौन है वाक मौन, मौन वाणी का, बोलना बंद। तीसरा मौन है इंद्रिय मौन, इंद्रिया भाग रही है, आंखें देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, जिह्वा स्वाद लेना चाहती है हर एक चीज का टेस्ट, नाक सूंघना चाहता है, हाथ स्पर्श करना चाहता है, रूप स्पर्श शब्द गंध, रस रूप शब्द स्पर्श गंध, फाइव सेंसेस खींच रहे हैं। इंद्रिय मौन तीसरा, इन इंद्रियों का मौन। और चौथा कहा है सुषुप्ति मौन। सुषुप्ति मौन अर्थात मन की जो वृत्तियां हैं, इच्छाएं, रिपल्स, तरंगे, उनको रोक देना, वो है सुषुप्ति मौन। चार मौन की चर्चा है। और आज हम चर्चा करेंगे मन के मौन की और वाणी के मौन की, दोनों ही आवश्यक है। मन के मौन तक पहुंचना है तो वाणी का मौन अधिक आवश्यक है। क्यों? सुबह से लेकर रात तक ये देखो हम क्या क्या बोल रहे हैं। जगदीश भाई जी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें लिखा है कि एक व्यक्ति ने जितना आज तक बोला है वो सारा यदि लिखा जाए और उसकी किताबें बनाई जाए तो ओम शांति भवन भी कम पड़ेगा, इतना हम बोल रहे हैं। मेडिटेशन जो है वो बीइंग की अवस्था है, डूइंग की अवस्था नहीं है। मेडिटेशन इज द स्टेट ऑफ बीइंग, नॉट डूइंग। और वो जो बीइंग है वो साइलेंस में घटित होता है। मैं जो हूं जैसा हूं उस स्थिति में स्थित होना, कुछ करना नहीं। करने से ही तो सारा उपद्रव हुआ है, करने से ही सारी झंझटें उत्पन्न हुई है। योग अर्थात अपने आप में स्थित हो जाना, बाहर नहीं जाना, बाहर वृत्तियां नहीं जाए, बाहर इंद्रिय न दौड़े, यह मौन है। चीन का एक सम्राट था जिसके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई थी कि वहां पर एक बहुत जो बड़ा मठ है ज़ेन मोनेस्ट्री, वहां जाऊं और वहां पर ये लोग क्या करते ये देखूं। वो जाता है वहां पर सम्राट और वहां का जो मठाध्यक्ष होता है ज़ेन मास्टर बांकेई, उससे मिलता है और बांकेई से कहता है कि मुझे अपने मठ की हर एक चीज बताओ। इतना बड़ा वो आश्रम, 5,000 से ज्यादा वहां पर तपस्वी और योगी और सन्यासी रहते थे। तो वो बांग के उन्हें ले जाता है और दिखाता है ये भोजन का गृह है, यहाँ पर सन्यासियों के लिए भोजन बनाया जाता है। फिर आगे बढ़ता है, कहता है यहाँ वो स्नान करते हैं, परंतु बीच में बहुत बड़ा एक भवन बना होता है, एक मंदिर के आकार का खुला। राजा बार बार पूछता है यहाँ तुम लोग क्या करते हो, तो वो ध्यान नहीं देता है और फिर आगे बढ़ता है, फिर बताता है यहाँ ये लोग सोते हैं, यहाँ ये लोग प्रार्थना करते हैं। फिर आगे बढ़ता है, फिर राजा पूछता है वो बादशाह ये जो बीच में जो स्थान बना है वहां तुम क्या करते हो, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। फिर आगे बढ़ते हुए मैदान दिखाता है, बगीचा दिखाता है और सारी चीजें दिखाता है, वो एक स्थान नहीं दिखाता जो बीच में बना हुआ है मंदिर के आकार का स्वर्ण जड़ित। आखिर राजा परेशान हो जाता है और जब वापस लौटने की बारी आती है और अपनी बगिया पर बैठता है बग्गी पर, तो वो पूछता है तुमने सब बताया ये क्यों नहीं बताया, मैं ये जानने के लिए आया यहां था। तो वो कहता है मैं कैसे बताऊं, आपने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि ये जो स्थान जो बीच में बना है वहां हम कुछ करते नहीं है, वो न करने का स्थान है, वो हमारा मेडिटेशन हॉल है, ध्यान कक्ष है, जहां हम कुछ न करने में अर्थात जो हम है आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग उसमें हम स्थित होते हैं। तो मैं किन शब्दों में बताऊं कि वहां अगर ये कहता हूं कि हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने की चीज नहीं है, वो तो स्वतः होने वाली चीज है। जो भी शब्दों में कहूं वो सब गलत होगा। इसके लिए मेडिटेशन इज एन आर्ट ऑफ बीइंग, नॉट डूइंग। डूइंग से ही तो सारी झंझट खड़ी हुई है। इसलिए मौन अर्थात स्व में स्थित हो जाना, मौन अर्थात न बोलना नहीं है, परंतु बोलने की जो उत्कट इंटेंस डिजायर है उससे मुक्त हो जाना, जिद करना और सिद्ध करना उससे मुक्त हो जाना मौन की अवस्था है। तो हम बात कर रहे थे सुबह से लेकर रात तक हम जो कुछ बोल रहे हैं, यदि हमें वास्तव में मौन के इस सौंदर्य को, मौन के इस मधुरता का टेस्ट करना है, तो सबसे पहले तो उन नुकसानों को निकालना पड़ेगा जो कि बोलने से होते हैं। ना बोले नौ गुण, ऐसी कहावत है हिंदी में, ना बोलना नौ गुण। तो सबसे पहले तो हम वो पॉइंट्स निकालेंगे जो हम इतना जो बोल रहे बोल रहे बोल रहे बोल रहे, नाम हम सेवा का देते हैं वो दूसरी बात है, परंतु उसमें बहुत सारी अनावश्यक बातें आ रही है। उनसे क्या क्या होता है पहले तो वो स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहली बात जो कही, हमारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। इस संसार में जितने महापुरुष हुए हैं सभी के जीवन को देखो, उनके जीवन में गहरा मौन था, वाणी का मौन। हम मन के मौन की बात बाद में करेंगे, पहले वाणी का मौन। एक दिन ऐसा बिताते थे हफ्ते में जिस दिन पूर्णतः मौन रहते थे। तो सबसे पहले तो शक्ति संचय मौन से, और नुकसान शक्ति का वेस्ट हो जाना। दूसरा, बोलने की जो इच्छा है हमें बहुत कुछ ऐसा करने में मजबूर करती है कि जो हमें नहीं बोलना चाहिए वो हम बोल देते हैं। ऐसे सीक्रेट्स हमारे जो हमें रिवील नहीं करने चाहिए वो भी हम बोल देते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं। एक अंग्रेजी ऑथर ने लिखा है कि मैं आज तक उन सभी चीजों के लिए पश्चाताप करता हूं जो मैंने बोल दी, उन चीजों के लिए कम करता हूं जो मैंने सोची पर बोली नहीं। तो एक तो शक्ति, दूसरा व्यर्थ, तीसरा अनावश्यक बोल, चौथा वेस्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है बोलते बोलते। कहां क्या हो रहा है, किसके जीवन में क्या हो रहा है, किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है वो जानना चाहते हैं। द्वेष, ईर्ष्या, मिसअंडरस्टैंडिंग, ग्लानी, निंदा, बोलते बोलते अभी अभी संडे मुरली चली थी ऐसे ही चालू भाषा, लास्ट संडे की मुरली, ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही हो गया, हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे ही किसी की टांग खींच ली, ऐसे ही की माया। वो बोलते 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 कब किसी की निंदा करना हम चालू कर दे, पर चिंतन करना चालू कर दे, पर दर्शन करना चालू करे, ये हमें भी पता नहीं चलता है। और सत्य जैसा होता है वैसा वो नहीं रहता है। जब एक मुंह से दूसरे मुंह और दूसरे से तीसरे तक पहुंचता है सत्य बदल जाता है। और न चाहते हुए भी किसी की निंदा हमसे हो जाती है, किसी की ग्लानी, किसी पर दोषारोपण, ब्लेम गेम, ब्लेम करना, अक्यूज करना, विरोध करना, ये सारी चीजें चालू हो जाती है। और एक चीज, स्पीच जो है, मस्तिष्क की एनर्जी भी उससे कम होती है, ब्रेन की एनर्जी। बहुत बड़े इस पर रिसर्च हुए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजल्स, अभी अभी एक रिसर्च निकाला था साइलेंस पर। उसमें उन्होंने कहा जो व्यक्ति बोल रहा है कंटिन्यूअस सुबह से लेकर शाम तक, कहीं ना कहीं उसका दिमाग कमजोर हो रहा है। एक कंपनी है प्रोमेगा, उस कंपनी में ऐसा नियम बनाया है कि हर एम्प्लॉई को दोपहर में 20 मिनट के लिए एकांतवास दिया जाता है और मौन का अभ्यास कराया जाता है। और देखा है कि जब से उन्होंने इस कंपनी ने चालू किए, उनकी कार्यक्षमता बहुत बढ़ गई है। दिन भर उनको बहुत काम करना पड़ता है, पर यह थोड़ा सा पीरियड एकांत का और सॉलिट्यूड का जैसे उनमें शक्ति भर देता है। तो बोलना दिमाग की जो शक्ति है उसको भी कम करता है, बोलना हमारी क्रिएटिविटी को भी कम करता है। ज्ञान की चर्चा करना वो अलग बात है। मितहारी बोल, सॉफ्ट वर्ड्स, सुखकारी बोल बोलना अलग बात है। हम बात कर रहे हैं उन बोल की जो व्यर्थ है, जो वेस्ट है, जो निंदा के है, जो ग्लानि के है, जो आवेग के है, आवेश के है, एक्साइटमेंट के है, इस डिजायर से है कि बस बोलना है। वो सभी बोल हमारी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। साथ साथ हम वो भी बातें बताएंगे मौन से क्या होता है। फिर मौन से हमारी संवेदनशीलता बढ़ती है, सेंसिटिविटी। दूसरा क्या कहना चाहता है, दूसरों के क्या भाव है, वो हम समझ पाते हैं। यहां तक कि जो घटनाएं हो रही है, यदि व्यक्ति मौन रहे तो उसे वो घटनाओं का भी ज्ञान होता है, उन घटनाओं में क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, और तो और आगे क्या होने वाला है वो भी उसे पता चलता है। साइलेंस पावर पर बाबा की बहुत सारी मुरलियां चली है, जिसमें बाबा ने कहा है जब तुम्हारी साइलेंस पावर इतनी बढ़ जाएगी तो तुम थॉट रीडर बन जाओगे। क्या होने वाला है वो तुम्हें पहले ही पता चलेगा। दूर श्रवण, दूरदर्शन, क्लैरवॉयंस, क्लैर ऑडियंस, टेलीपैथी की वो पावर स्वतः ही तुम में आने लगेगी, और वो आएगी साइलेंस से और वाणी से। क्या होता है आप बताइए। अब कंटिन्यूस बोलने से थकान, सेवा इतनी नहीं थकाती। अगर दो सेवाधारी है, दोनों को समान सेवा दी हुई है, एक मौन में वही सभी सेवा कर रहा है, दूसरा बोलकर कर रहा है, कौन ज्यादा थकेगा? बोलने वाला। किचन की सेवा दो माताओं को दी गई है, एक कंटिन्यूस बोल रही है, कमेंट्स कर रही है हर चीज पर, ये नहीं है, वो नहीं है, ये है, वो नहीं है, आवाज है, मुख का भी आवाज और बर्तनों का भी आवाज। जब मुख का होगा तो बर्तन का तो होना ही है। और दूसरा है, दूसरी माता है, चुप है। छोटा सा एक संकल्प ले लिया है अमृत वेले, आज सारे काम बाबा की याद में करने हैं, तो वो मौन स्वतः ही हो रहा है। मन का लिया है, मुख का हो रहा है, या कभी ऐसा भी होता है मुख का भी ले ले तो मन का हो जाए। फिर दोनों ही चीजें हैं। कभी कभी मुख का भी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि मन का हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। कार्य क्षमता बढ़ जाती है साइलेंस से, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है साइलेंस से, रचनात्मकता, चीजों की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है, व्यू पॉइंट, पर्सपेक्टिव, नजरिया, उसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी आ जाएगी। ये सब मौन से होता है, केवल वाणी के मौन से भी ये सब चीजें होती है। और जैसे जैसे वाणी का मौन, बीच बीच में, सारा दिन भर तो कईयों को यह संभव नहीं है क्योंकि सेवाएं हैं, सेवाओं में बहुत बोलना है, परंतु सुबह का समय हमारे पास है, कम से कम 8 बजे तक या 9 बजे तक एक व्रत इस भट्टी से लेके जाना है। कौन सा व्रत? मौन का। अगर बोलना है तो केवल ज्ञान की ही बातें सुबह 8 बजे तक, बाकी वार्तालाप, बाकी डिजिटल वर्ल्ड मैसेजेस, ये वो व्हाट्सएप, इनसे स्वयं को थोड़ा दूर रखना है सुबह कम से कम 8 बजे तक, और फिर से रात में 8 या 9 बजे के बाद फिर से मौन, और हो सके तो हफ्ता में एक दिन वाणी का संपूर्ण मौन। अपने आप को देखना है कि मैं कहां कहां व्यर्थ बोलता हूं, वो कौन सी कंपनी है, कौन से वो लोग हैं कि जिनके संग में जाते ही व्यर्थ चालू होता है, उसको स्टॉप करना है। एक दिन भी यदि कोई मौन रहे, पूरा दिन मुख का संपूर्ण, तो शाम तक देखोगे कि एक शक्तिशाली स्थिति बन गई है। एक शक्तिशाली स्थिति, और फिर वो भाषा, फिर वो वाणी जैसे लगने लगती है कितनी व्यर्थ है। मौन की एक परिभाषा ये भी है कि मौन में शब्द निकले। हम ये नहीं कह रहे कि चुप ये मौन है। मौन की एक परिभाषा एक ये भी है कि यदि ये सर्कल है, इस सर्कल के बीच में मौन, और जो परिधि है, जो सर्कमफेरेंस है, वो कर्म है और शब्द है। तो जो कर्म है और जो शब्द है वो भी मौन से ही निकले। यदि मौन गहरा है तो मौन अर्थात आत्मचिंतन, मौन अर्थात स्वचिंतन, मौन अर्थात सेल्फ एनालिसिस, मौन अर्थात कार्य कर रहे परंतु अंतर्मुखी, मौन अर्थात एकांत, मौन अर्थात आत्ममूल्यांकन, मौन अर्थात सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अकाउंटिंग। बाह्य जगत को बहुत देखा, अब अपने आप को देखना है। स्वचिंतन मौन, स्वदर्शन मौन, और ये अवस्था कर्म में रहे तो वो वास्तविक मौन है। सुबह तो सहज हो जाएगा, शाम को भी हो जाएगा, परंतु जो ड्यूटी आवर्स है, ऑफिस के टाइम है, या जिनमें हम दूसरों के साथ संपर्क में आते हैं, वो संपर्क में आना तो चल रहा है परंतु फिर भी साथ साथ मौन हो रहा है। क्या ऐसी अवस्था आ सकती है? अगर ऐसी आए तो वही वास्तविक मौन है। शब्द बोल रहे परंतु शब्द में पावर है, शब्द बोल रहे परंतु शब्द शब्द जो है वो मौन से निकल रहे हैं, वाक्य वाक्य में शक्ति है, दो वाक्य के बीच में जो अंतराल है उस अंतराल में भी शक्ति है। स्वयं को चेक करना है कि बोल से हमारी कहां कहां कौन कौन सी कितनी शक्तियां वेस्ट हो रही है। जब व्यक्ति मौन रहता है तो निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, पावर टू जज, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। चीजों को हम वैसा नहीं देखते जैसे आप देख रहे हैं, अस्पष्ट। हर एक के जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं परंतु हम जैसे ही मौन हो जाए तो देखेंगे वो समस्या है ही नहीं, वो हमारे क्लाउडेड थिंकिंग की वजह से हो रही है। हम स्पष्ट नहीं देख पा रहे चीजों को, इसलिए वो समस्या भास रही है। परंतु जैसे ही माइंड साइलेंट हो जाए, हो जाता है, तब वो स्पष्ट दिखाई देने लगती है। हमने अपने ही जीवन में तीन अलग अलग समय पर ज्ञान में आने से पहले, जो कि हमने संकल्प नहीं किया था परंतु स्वतः ही मौन की अवस्था में गए थे। पहला मौन जो था वो 6 मास तक चला था, और उस 6 मास में हमने ये देखा था कि जो चीजें होने वाली है वो हमें पहले ही जैसे आभास हो जाता था। हम ये नहीं कह रहे कि वो हम कोई अध्यात्म की साधना कर रहे थे, वो स्वतः ही हुआ था कुछ और कारणों से, परंतु वो एक खोज थी ईश्वर की, उस वजह से वो मौन हुआ तो था, और उस मौन से स्वतः ही शक्तियां जमा हो गई थी। हम कहेंगे कि वो जो मौन किया था तब, वो अब तक चल रहा है उसकी पावर। वो वाणी का मौन था, संपूर्ण मौन, एक शब्द भी हमें याद है शायद मुंह से ना निकला हो, और जो शक्ति का हमने तब अनुभव किया था, जो आवाजें हमने सुनी थी प्रकृति की, जो कि मनुष्य प्रकृति से कितना दूर हो चुका है, उसे प्रकृति की आवाजें सुनाई नहीं देती है, वो आत्मा में पावर भरती थी। और ऐसी अवस्था में यदि ज्ञान का चिंतन किया जाए तो स्थिति स्वतः ही मगन हो जाती है, और ऐसी अवस्था में यदि योग कोई करे तो वो योग इतना शक्तिशाली होगा कि देह का, इस देह के जगत का कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। अशरीरी अवस्था का अनुभव उसी मौन की अवस्था में घटित होता है। आत्मशुद्धि का मार्ग है मौन, आत्मोन्नति का मार्ग है मौन। द ग्रेटेस्ट पावर, द हाइएस्ट पावर आर हाइएस्ट साइलेंस आर फेड। स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है, यदि सर्वोच्च पावर को पाना चाहते हो तो सर्वोच्च मौन चाहिए। ग्रेटेस्ट साइलेंस, और उस साइलेंस के इर्द गिर्द जीवन घूमे, उस साइलेंस से शब्द निकले, उस साइलेंस के केंद्र से परिधि पर कर्म हो रहे हैं, सबके संपर्क में है, बात भी कर रहे, परंतु बिंदु मौन है। जैसी बात पूरी, दौड़कर आत्मा उस केंद्र पर पहुंच रही है मौन के। सबसे पहले ये चेक करना है कि मेरे जीवन में वाणी ने क्या क्या नुकसान कर दिए हैं, मेरे डैमेजेस। यदि उन जीवन में हुई घटनाओं को देखो और सोचो कि इस अवस्था में मैं अगर न बोलता तो क्या होता, और बोलने से क्या होगा, झूठा आरोप लगे और कोई चुप है तो क्या होता है, और झूठा आरोप लगे और कोई स्वयं को डिफेंड करे, सिद्ध करे तो क्या होता है। चेक करो स्वयं को। तो एक है वाणी का मौन, वो करते ही अद्भुत शक्ति आने लगती है। दूसरा है फिर मन का, जिसमें मन इतना शांत हो जाए, मन इतना आत्म केंद्रित हो जाए, उस शांति स्वरूप में इतना टिक जाए कि स्वतः ही मुख शांत हो जाता है। बाबा ने हमेशा मन के मौन की बात की है। मन का मौन अर्थात संकल्प कम से कम, मन का मौन अर्थात मन आत्माभिमानी स्थिति में स्थित है। आज सुबह की मुरली त्याग पर थी, कहीं और एक जगह बाबा ने वाणी से वैराग की बात की थी, कभी वाणी का त्याग। संकल्पों का जो आंदोलन, संकल्पों की जो एक्साइटमेंट, संकल्पों की जो ट्रैफिक, जो क्राउड, जो भीड़ अंदर है, वो उसको शांत कर देना, वो मन का मौन है। जब मन का मौन हो जाता है तो वाणी का स्वतः ही होता है। परंतु फिर भी हम सभी को वाणी का भी मौन करना है, क्योंकि वो भी एक साधना है, वो वाक तपस्या है। मौन अर्थात वाणी की, वाणी का तप है वो। उस तप से जब हम गुजरते हैं तो ही बाद में कम बोलना ये समझ में आता है। कंप्लीट साइलेंस की यात्रा से जब तक व्यक्ति नहीं गुजरता तब तक उसे ये नहीं पता चलता है कि कम भी बोलना है। कंप्लीट साइलेंस का लक्ष्य रखेंगे तब लेस टॉकिंग होगा। लेस टॉकिंग का लक्ष्य रखेंगे तो टॉकेटिव होंगे, क्योंकि उसकी सीमा रेखा क्या है फिर। संकल्प की आज कम बोलेंगे परंतु नियंत्रण नहीं है फिर उस पर। लक्ष्य रखना है संपूर्ण मौन का, और फिर उसमें जहां जहां आवश्यकता है वहां पर वाणी में आना है। तो दोनों ही चीजों को हमको साधना है। हमने बात की थी झूठे मौन की, जैसे कोई जबरदस्ती अगर कोई मौन करे और जबरदस्ती दबाए, जहां दमन करे वहां पर कुछ और हो सकता है फिर, वहां पर मौन नहीं चाहिए। भावनाओं को व्यक्त करना है, या तो उस व्यक्ति के सामने जिसमें विश्वास है, या किसी पर यदि विश्वास नहीं है तो बाबा के सामने दबा के नहीं रखना है कोई इमोशन को। यदि एंगर का इमोशन है, किसी ने हमें कुछ कह दिया और उसके प्रति हमने घृणा को दबा के रखा और लंबा समय तक दबा के रखा, तो एक दिन वो बदला लेगी। इसके लिए कैथारसिस इंग्लिश में कहते हैं, परगेशन, उसको व्यक्त कर दो। और सबसे बेस्ट हमारा जो फ्रेंड है वो शिव बाबा है, उसके सामने दिल की हर बात को कह दो। यदि किसी एक आत्मा के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत कुछ भी है, या तो लिखकर उसे बोल दो, पर उसको इस तरह से ये वाला मौन ना हो कि दबा के रखा है उसे। एक जैन मोनेस्ट्री में एक व्यक्ति होता है जो कि झूठा मौन करता है, और वो अपने आप को कहता है मैं मास्टर ऑफ साइलेंस हूं। उसके पास ज्ञान कुछ भी नहीं होता है, वो चुप रहता है। उसने अपने साथ दो शिष्य रखे होते हैं, वो शिष्य ही उत्तर देते हैं हर चीज का। कोई भी जिज्ञासु आकर पूछता है तो वो शिष्य को कह देता है कि आप उत्तर दो, क्योंकि इनका मौन है। तो एक बार वो शिष्य कहीं बाहर चले जाते हैं और एक जिज्ञासु बीच में आ जाता है। अब इसके लिए मुसीबत हो जाती है, क्योंकि इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, ये झूठा साधु होता है। तो वो उसको पूछता है सत्य क्या है। अब ये डर जाता है, अपने शिष्यों को ढूंढने लगता है, इधर देखता है, दाएं देखता है और बाएं देखता है, कहीं शिष्य मिलते नहीं। तो सामने का जिज्ञासु बहुत खुश हो जाता है। फिर जिज्ञासु पूछता है धर्म क्या है, ऊपर देखता है, नीचे देखता है, शायद शिष्य कहीं ऊपर हो, तो जिज्ञासु और ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो पूछता है भगवान क्या है। अब ये साधु जो होता है डर जाता है, अभी क्या करूं, वो खुद प्रार्थना करने लगता है, प्रभु मेरी रक्षा करो, अब मैं क्या उत्तर दूं। तो सामने का जिज्ञासु और ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जिज्ञासु पूछता है आपका इस संसार के लिए क्या आदेश है, संदेश है। तो वो लास्ट में कहता है जैसे कि मैं हार चुका हूं, मुझे माफ कर दो, बिना कुछ बोले हाथ सामने कर देता है। तो जिज्ञासु बहुत खुश होकर जाता है। बीच में रास्ते में दो शिष्य मिलते हैं, वो शिष्य पूछते हैं कैसे रहा। तो वो कहते हैं आपके गुरु तो बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं, जब मैंने उनसे पूछा सत्य क्या है तो उन्होंने इधर देखा उधर देखा, इसका मतलब सत्य ना इधर है ना उधर, वो अंदर है। जब मैंने उनसे पूछा धर्म क्या है तो उन्होंने ऊपर देखा और नीचे, अर्थात धर्म अर्थात ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, सब समान है धर्म में। जब मैंने उनसे पूछा भगवान कौन है तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। भगवान कोई मुख से थोड़ी ना कहा जा सकता है, परम मौन में ही उसका अनुभव हो सकता है भगवान का। और जब मैंने पूछा कि आपका संदेश के लिए संदेश तो उन्होंने हाथ सामने कर दिया, ये जीवन ही समर्पित है संसार के लिए। तो वो कहता है आप जैसे आपके जो गुरु है बहुत ऊंचे, एक झूठा मौन कोई करता है तो भी क्या होता है संसार में। कहा जाता है भरतहरि ने कहीं कहा है ज्ञानियों की सभा में मूर्खों का श्रृंगार मौन है। ज्ञानियों की सभा में यदि कोई मूर्ख बन जाए और उसे मूर्ख हो और उसे ये दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं तो उसे क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, बोलकर अपनी मूर्खता प्रकट नहीं करनी चाहिए। तो इस मौन तक पहुंचने के लिए एक आधार है चिंतन, ज्ञान का मनन, और वो सारे दिन भर यदि मनन चलता रहे तो मुख स्वतः ही व्यर्थ नहीं कहेगा, कुछ व्यर्थ बोलेगा नहीं, ना ही व्यर्थ चिंतन होगा, दोनों ही मौन घटित होंगे, मन का भी और मुख का भी। और सारे दिन भर जब हम मौन रहते हैं तो शाम को जब योग में बैठेंगे तो वो योग कैसा होगा, शक्तिशाली और पावरफुल होगा। अमृत वेला जब योग में बैठेंगे तो बाबा से समीपता का अनुभव होगा, सामीप्य का अनुभव होगा, वो इंटीमसी का अनुभव होगा कि वो मेरे साथ है। अभी हम दिन भर में देखेंगे बाबा के कमरे में बैठते, याद करते, बाबा की ही सेवा करते, फिर भी हमने देखा कि एक अनुभव ऐसा होता है कि हम बाबा से जैसे दूर है कहीं। एक ही कारण है उसका, मुख बाह्य मुखी है, बाह्यगामी है। यदि इस मुख को रोक लिया जाए और फिर भी उस मौन की अवस्था में सारे कर्म किए जाएं, तो याद भी शक्तिशाली होगी, मन का भी मौन होगा, कार्य भी अच्छे से होगा, कार्य में क्रिएटिविटी भी होगी, कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और हमको शक्तिशाली अनुभव होगा। शाम को जब हम बैठेंगे तो बाबा से समीपता, सुबह बैठेंगे तो बहुत समीप अनुभव होगा। तो इस भक्ति से सभी कौन सा पाठ पढ़कर जाएंगे? मौन का, मन का मौन और मुख का मौन। थोड़ी बातें हमने की, समय पूरा हो रहा है, इस पर हर एक स्वयं चिंतन करे कि मैं क्या क्या व्यर्थ बोलता हूं, क्या उस व्यर्थ को बोलने की योजना कैसे बनाऊं। वो प्लानिंग यहां बनाकर जानी है, वहां क्या करना है, सेंटर पर क्या करना है, घर पे क्या करना है, ऑफिस में क्या करना है, उसकी प्लानिंग कहां बनानी है? यहां। ऐसे वो कौन से व्यक्ति है कि जिनके संपर्क में जाते ही व्यर्थ निकलने लगता है? उनसे थोड़ा दूर। ऐसा वो कौन सा स्थान है, ऐसे वो कौन से टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है, विषय है कि जिनकी चर्चा आते ही, वैसे किस व्यक्ति की चर्चा आते ही मुख बोलना चालू कर देता है, कुछ संयम नहीं रहता है, नियंत्रण नहीं रहता है, वो कौन सी अनियंत्रण करने वाली वस्तुएं, चीजें, उत्तेजनाएं हैं? उनका चिंतन यहां बैठकर करना है, यहां मधुबन की इस पावन भूमि पर, इस मौन की भूमि पर, इस मधुर भूमि पर उसकी प्लानिंग करनी है और फिर यहां से जाना है इस मौन की खुशबू संसार में बिखेरने के लिए। ओम शांति।